हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अर्णव के इस व्यवहार ने स्पष्ट कर दिया था कि उसे इस घर में उसकी नज़रों में कोई इज्जत नहीं है। जब घर का मालिक ही उसकी इज्जत नहीं करता, उसे कुछ नहीं समझता, तो घर के नौकर क्यों उसकी इज्जत करते या उसे अपनी मैडम मानते? उनकी नज़रों में धृति का स्थान बहुत नीचा था, या यूं कहें कि कोई स्थान ही नहीं था। पर शीला फिर भी उसे वो इज्जत दे रही थी जिसकी वो हकदार थी। भले ही वो कुछ नहीं जानती थी, पर इतनी सालों में मुंबई जैसे शहर में रहकर वो इंसान के चेहरे देखकर उनकी फितरत पहचानना सीख गई थी, और धृति के चेहरे पर छाई मासूमियत चीख चीख कर उसकी सच्चाई की गवाही दे रही थी। शीला समझ रही थी कि जुबान भले ही धृति की थी, पर उससे निकले शब्द अर्णव के थे। इतने सालों से यहाँ काम कर रही थी तो अर्णव को वो काफी अच्छे से जानती थी। धृति के कहने पर उसने मुस्कुराकर हामी भर दी और उसे सब समझाने लगी। धृति उसके बताए अनुसार अर्णव के लिए चीज़ सैंडविच बना रही थी। शीला उसे अर्णव की पसंद नापसंद, वो कब क्या खाना पसंद करता है, किन चीज़ों को देखना भी नहीं भाता, कब किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सब समझा रही थी। धृति उसके लिए नाश्ता तैयार करते हुए बड़े ध्यान से उसकी हर बात सुन रही थी। करती क्या, और कोई रास्ता भी तो नहीं था उसके पास। अगर अर्णव को कहीं कोई कमी लगी और वो गुस्सा हो गया तो फिर कल रात जैसी हरकत करेगा उसके साथ, या शायद उससे भी ज्यादा कुछ बुरा करेगा। इसलिए उसे उसकी बात माननी ही थी, उसे खुश रखना ही था। उसके पैर से खड़ा नहीं हो रहा था और ये शीला देख रही थी। जहाँ जहाँ वो कदम रखती वहाँ खून के हल्के हल्के निशान बन जाते थे। एक तो जख्म गहरा था, उस पर चलने और खड़े होने की वजह से पैर पर लगातार दबाव पड़ रहा था जिस वजह से खून बंद नहीं हो रहा था। उस पर वो नंगे पांव घर में घूम रही थी तो फ्लोर पर उसके पैरों के निशान बन रहे थे। धृति जूस तैयार कर रही थी तभी शीला वहां से चली गई। कुछ देर बाद वापस आई, फिर उसे वहां लगी कुर्सी पर बिठाकर उसके पैरों की ड्रेसिंग करने लगी। धृति ने मना करना चाहा, पर उसके अनुरोध पर मान गई। शीला ने उसके पैर के जख्म पर दवाई लगाकर ड्रेसिंग कर दी, फिर उसे वहीं बैठने को कहकर नाश्ता लेकर किचन से बाहर निकल गई। अर्णव के आने का वक्त हो गया था, इसलिए उसने जल्दी से नाश्ता लगा दिया। वो उसके ग्लास में जूस डाल ही रही थी कि उसके कानों में अर्णव की गुस्से भरी आवाज पड़ी। ये काम धृति को करना है, अगर तुम ये सब कर रही हो तो वो कहाँ है? उसके अचानक गुस्से भरे इस कथन को सुनकर एक पल को शीला घबरा गई, फिर उसने सहजता से जवाब दिया, सर ये नाश्ता मैडम ने ही आपके लिए बनाया है, उनके पैरों में चोट लगी है, चलने में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने उन्हें किचन में आराम करने को कह दिया। और ये हक तुम्हें किसने दिया? अर्णव का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। शीला उसका सवाल सुनकर सर झुकाकर खड़ी हो गई। इतने में अर्णव ने गुस्से में आगे कहा, मेरे ऑर्डर को ना मानने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या सोचकर तुमने उसको वहाँ आराम करने को कहा है? जब मैंने उसको ये काम करने को कहा था तो तुम्हें ये हक किसने दिया कि मेरी बात की अवहेलना करो और दूसरों को भी यही सिखाओ? पैर में जरा सी चोट ही लगी है ना, कोई मर तो नहीं गई और ना ही उसके पैर कट गए हैं जो दो कदम चलकर आ भी नहीं सकती, और अपना काम तुम्हें देकर वहाँ आराम फरमा रही है। ले जाओ ये सब वापस और उसे कहो कि खुद आकर सर्व करे मुझे, वो मेरी वाइफ है तो ये जिम्मेदारी उसकी है, और अपने फर्ज से काम चोरी करने वाले लोगों से मुझे सख्त नफरत है। जाओ बुलाकर लाओ उसे अभी और इसी वक्त। अगर अगले दो मिनट के अंदर वो मुझे मेरे पास नहीं मिली तो अच्छा हुआ होगा उसके लिए भी और तुम्हारे लिए भी। बेचारी शीला चाहकर भी कुछ ना कर सकी। सालों से वो अर्णव के लिए काम कर रही थी, पर अर्णव ने आज पहली बार उस पर ऐसे चिल्लाया था। सभी नौकर हतप्रभ से उसे देखने लगे, जबकि शीला खामोशी से नाश्ता ट्रे में रखकर वापस किचन की तरफ बढ़ गई। अर्णव इतनी तेज आवाज में चिल्लाया था कि उसकी बातें बाहर खड़े गार्ड्स ने भी साफ साफ सुनी थीं। फिर भला डाइनिंग एरिया से कुछ दूरी पर बने किचन में बैठी धृति को कुछ पता कैसे नहीं चलता? शीला किचन के पास पहुंची ही थी कि सामने से आती धृति पे उसकी नज़र पड़ी। वो लड़खड़ाते कदमों से उसी की तरफ बढ़ रही थी। दर्द चेहरे पर साफ नजर आ रहा था, पर शीला चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो कुछ कहती उससे पहले ही धृति ने उसके हाथ से ट्रे ले लिया और हल्का सा मुस्कुरा दी। शीला सर झुकाकर खड़ी हो गई और धृति हाथ में ट्रे थामे आगे बढ़ गई। उस जीनतदार दुपट्टे के नीचे से उसकी गोरी कमर और उस पर उभरे निशान साफ नजर आ रहे थे। गर्दन पर मौजूद निशान कल रात की कहानी बयां कर रहे थे। सभी नौकर उसे अजीब निगाहों से घूर रहे थे, जिसे महसूस कहते हुए धृति खुद में सिमटती जा रही थी। असहजता उसके चेहरे पर साफ छलक रही थी। वो किसी तरह लंगड़ाते हुए डाइनिंग टेबल के पास पहुंचकर ट्रे टेबल पर रखकर उसकी प्लेट लगाने लगी। अर्णव की निगाहें हाथ में पकड़े फोन पर टिकी हुई थीं और पीछे मौजूद नौकर आपस में कानाफूसी कर रहे थे। अर्णव ने तो निगाहें उठाकर धृति को देखा तक नहीं और खामोशी से अपना नाश्ता करता रहा। ऐसा नहीं था कि वो नहीं जानता था कि उसके सामने वहां मौजूद नौकर धृति के बारे में कैसी बातें कर रहे थे। उनकी बातों से धृति को तकलीफ हो रही थी और उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। वो अपना सर झुकाए वहां खड़ी थी, कभी अपनी हथेली से अपनी गर्दन को ढकने की कोशिश करती तो कभी दुपट्टे से अपनी कमर को ढकने की नाकाम कोशिश करती, और अर्णव सब जानते हुए भी अनजान बना बैठा था, जैसे उसे कुछ न तो दिखाई दे रहा हो ना ही कुछ सुनाई दे रहा हो, या शायद उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने अपना नाश्ता खत्म किया, फिर अपनी चेयर से उठकर धृति की तरफ बढ़ गया। धृति निगाहें झुकाए खड़ी थी, पर अपनी तरफ बढ़ते अर्णव के कदमों से अनजान नहीं थी वो। वो धीरे से अपने कदम पीछे हटाने लगी, पर अर्णव ने आगे बढ़कर तेजी से उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। धृति ने घबराकर निगाहें उठाकर उसे देखा। वही अर्णव के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं थे, पर उसकी इंटेंस निगाहें धृति के चेहरे पर टिकी हुई थी। धृति ने हड़बड़ाहट में निगाहें घुमाई तो आसपास खड़े नौकर आंखें भाड़े उन्हें ही देख रहे थे। धृति की एक हथेली अर्णव के सीने पर टिकी थी, वही दूसरी को अर्णव ने मोड़कर उसकी पीठ से लगाई हुई थी। धृति ने सबकी निगाहों को खुद पर टिका देखा तो अर्णव के सीने पर रखी हथेली से उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए घबरा कर बोली, क्या कर रहे हैं आप? सब यही देख रहे हैं, छोड़िए मुझे। अर्णव ने उसे छोड़ने के बजाय उसे अपने और करीब खींच लिया। धृति की सांसें अटक गई, वो अपनी घनी पलकों को फड़फड़ाते हुए घबराई हुई से उसे देखने लगी। अर्णव ने उसकी निगाहों में निगाहें मिलाते हुए धीमी पर सख्त आवाज में कहा, क्या हुआ? शर्म आ रही है सबके सामने मेरे करीब आने से, पर तुम्हारे मुंह से ये बातें कुछ ठीक नहीं लगती। तुम्हें तो इन सबकी आदत होनी चाहिए, फिर मेरे सामने ये सती सावित्री बनने का नाटक क्यों? जो हो वही बनकर रहो, क्योंकि मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है और मैं तो पति हूँ तुम्हारा। जब तुम्हें कभी भरी महफिल में अपने आशिकों के साथ इससे आगे तक जाने में शर्म नहीं आई तो ये तो अपना घर है और मैं तुम्हारा पति, मेरा तो हक है तुम पर, फिर इतनी घबराहट क्यों स्वीटहार्ट? अर्णव उसे बुरी तरह घूर रहा था, वहीं धृति उसकी बातें सुनकर हैरान परेशान सी उसे देखे जा रही थी। अर्णव के भाव एकदम सख्त थे, वो जानबूझकर ये सब कर रहा था, वो सिर्फ धृति को नीचा दिखाना चाहता था।
उसने उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए जैसे ही उसके होठों को छूना चाहा, धृति ने अपने होठों को भींच लिया। अर्णव की भौहें सिकुड़ गईं, उसने खा जाने वाली निगाहों से उसे घूरा, फिर उसके कान के पास लब सटाते हुए वहां लव बाइट का निशान बना दिया। धृति के मुंह से हल्की सी सिसकी निकल गई। अगले ही पल अर्णव ने उसे देखकर बेहद प्यार से कहा, माय वाइफ, शाम को मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखना, यू नो ना आई लव यू सो मच। उसने हौले से उसके गाल को चूम लिया। उसके लहजे में आए इस अचानक बदलाव की वजह से धृति आंखें बड़ी बड़ी किए हैरानी से उसे देखे जा रही थी। अर्णव ने एक उड़ती नज़र पीछे खड़े नौकरों पर डाली और धृति को छोड़कर तेज कदमों से वहां से चला गया। धृति अर्णव के इस हरकत के बाद निगाहें उठाने की हिम्मत भी नहीं कर सकी। नौकर अब उसके बारे में और ज्यादा वाहियात बातें करने लगे, करते भी क्यों, आखिर उन्हें ये मौका खुद अर्णव ने ही तो दिया था। धृति के लिए एक पल भी वहां रुकना बहुत मुश्किल हो गया था। सबकी अजीब निगाहों को खुद पर महसूस करते हुए वो खुद में सिमटती जा रही थी, आंखों में आंसू भरने लगे थे। एक बार फिर अर्णव के लगाए इल्जाम और उसके चरित्र पर उठी उसकी उंगली धृति को आहत कर गई थी और आंसू आंखों से छलक आए थे। उसने अपने जख्म की परवाह तक नहीं की और रोते हुए वहां से भाग गई। भागते हुए वो सीधे कमरे में पहुंची और बिस्तर पर बेजान सी उल्टी गिरकर तकिए में मुंह छुपाई रो पड़ी। अभी उसे यहां आए हुए कुछ ही देर हुई थी कि उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। आवाज सुनते ही धृति झट से उठकर बैठ गई। उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए शांत लहजे में कहा, कौन है? मैम, सर के ऑफिस से माधुरी मैडम आई हैं आपसे मिलने। माधुरी नाम सुनते ही धृति को याद आया कि कल उसने ही उसे तैयार किया था। अर्णव के बारे में ज्यादा कुछ तो जानती नहीं थी वो, पर वो अमीर, पैसे वाला, ताकतवर आदमी है, इतना समझ गई थी वो, और साथ ही ये भी समझ गई थी कि माधुरी उसी के लिए काम करती है। अर्णव के बारे में सोचते ही धृति के चेहरे पर दर्द, बेबसी, गुस्सा, नफरत और कड़वाहट जैसे अनेकों भाव उभर आए। उसने अपने आंसू पोंछे और कपड़ों को ठीक करते हुए बोली, अंदर भेज दीजिए। वह दरवाज़ा बंद करके आई ही नहीं थी, बस भिड़का ही था। उसका जवाब मिलते ही दरवाज़ा खुला और दोनों हाथों में कुछ शॉपर्स लिए माधुरी ने कमरे में कदम रखा। उसने एक नज़र धृति को देखा तो उसकी लाल सूजी आंखें, सूजे हुए होंठ जो जगह जगह से कटे हुए थे, गर्दन पर मौजूद नाखूनों और दांतों के निशान देखकर माधुरी के चेहरे पर दर्द के भाव उभर आए। ये निशान अर्णव की बेरहमी और धृति के दर्द की कहानी बयां कर रहे थे जो उसने बीती रात सहा था। उसकी आंखों में मौजूद नमी चीख चीख कर बयां कर रही थी कि वो अभी भी दर्द में है और रोई है। माधुरी एक सेकंड से ज्यादा देर तक धृति को देख नहीं सकी। उसने अपनी निगाहें झुका लीं। मैडम, ये कुछ कपड़े और आपकी जरूरत का बाकी का सामान है, सर ने भेजा है आपके लिए और कहा है कि फ्रेश होकर खाना खा लीजिएगा। धृति के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। उस उदासी के पीछे असहनीय पीड़ा और दर्द झलक रहा था। उसने खुद को संभाला और बिना किसी भाव के बोली, रख दीजिए। माधुरी ने सारे शॉपर्स सोफे पर रखे और वहां से चली गई। दरवाज़ा बंद होने के बाद धृति उठकर सोफे की तरफ बढ़ गई। उसने शॉपर्स देखे तो साबुन, शैम्पू, मेकअप का सामान और ज़रूरत की बाकी सभी चीज़ें थीं उनमें, पर कपड़े सब के सब काफ़ी महंगे, डिज़ाइनर और रिवीलिंग थे। कुछ घुटनों तक की ड्रेस कुछ उससे भी छोटी थीं, कुछ गाउन थे जो जांघों तक स्प्लिट थे, तो कोई बैकलेस, शोल्डरलेस ड्रेस थी, किसी का गला काफ़ी डीप था। इन शॉर्ट, एक भी ऐसा कपड़ा नहीं था जिसे धृति पहन सके। उसने सब सामान वापस शॉपर में डाला और बिस्तर पर आकर बैठ गई। कुछ वक्त बीता, धृति अब भी बिस्तर पर बैठी थी, तभी बाहर से शीला की आवाज़ आई, मैम आपने नहा लिया, मैं खाना ले आऊँ आपके लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं है, धृति का जवाब सुनकर शीला वहाँ से चली गई और पीछे रह गई धृति। भूखी प्यासी, मायूस सी बैठी वो कल के बारे में सोच रही थी। धृति अवस्थी, एक मिडिल क्लास लड़की, पापा नहीं है उसके। जब 7 साल की थी तभी उसके पापा की एक कार हादसे में डेथ हो गई थी, जिसका जिम्मेदार धृति को ठहराया गया, पर 7 साल की धृति समझ तक नहीं सकी कि उसने क्या गलत किया। 2 बहनें थीं वो, बड़ी बहन सृष्टि जिससे उसकी मम्मी को बहुत प्यार था, कोमल अवस्थी धृति की माँ और सृष्टि अवस्थी। उस दिन क्या हुआ वो या तो सृष्टि जानती है या धृति, बाकी कोई हकीकत नहीं जानता। पर अपनी माँ, बड़ी बहन से लेकर रिश्तेदार और गली मोहल्ले वाले सब धृति को ही उसके पिता की डेथ की वजह समझते हैं, जिसके लिए वो दिन रात ताने सुना करती हैं। धृति के पापा उससे बहुत प्यार करते थे। पापा की परी बचपन से बहुत क्यूट और सुंदर थी, जिसके लिए उसकी बड़ी बहन बहुत चिढ़ती थी। उनके जाने के बाद धृति परिवार के होते हुए जैसे उस घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। बड़ी बहन वैसे ही उससे चिढ़ती थी और पिता के जाने की वजह बनने के बाद तो जैसे माँ ने भी उससे मुंह मोड़ लिया था। 2 महीने पहले ही उसने लोकल कॉलेज से फैशन डिजाइनिंग में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। ब्रिलियंट स्टूडेंट थी वो, पर लोकल कॉलेज जाना पड़ा, जिसकी वजह आगे पता चलेगी। स्कूल कॉलेज के साथ धृति ट्यूशन भी देती थी, कपड़े सिलने का काम भी करती थी और साथ ही घर भी संभालती थी। अगर ये कहें कि पूरे घर की जिम्मेदारी वो कम उम्र से अपने कंधे पर उठा रही थी तो गलत नहीं होगा। पहले तो कोमल जी सोसाइटी में काम करके घर चलाती थी, पर फिर उनकी तबीयत खराब रहने लगी और बड़ी बहन के होते हुए सारी जिम्मेदारी धृति पर आ गई। कॉलेज के बाद उसने एक बुटीक में काम करना शुरू कर दिया था, ताकि थोड़े पैसे जमा करने और अनुभव मिलने के बाद अपना खुद का बुटीक खोल सके। कल भी वो बुटीक में अपना काम ही कर रही थी जब उसके पास किसी अननोन नंबर से फ़ोन आया, जिसमें उसे धमकी दी गई कि तय वक्त पर भेजे हुए एड्रेस पर पहुंचे वरना अपनी फैमिली को हमेशा हमेशा के लिए खो देगी। धृति को ना तो कुछ समझने का मौका मिला और ना ही कुछ कहने का। अपनी बात कहकर उस शख्स ने फ़ोन काट दिया। साथ ही मैसेज आया जिसमें एड्रेस लिखा था। एड्रेस के साथ एक फ़ोटो भी आई जिसमें कोमल जी को कुर्सी पर रस्सी से बांधा हुआ था और वो बेहोश थीं। फ़ोटो देखने के बाद धृति ने दोबारा उस नंबर पर फ़ोन लगाना चाहा, पर नंबर नहीं लगा। मैसेज किया तो कोई रिप्लाई नहीं आया। आखिर में धृति, जिसके सर पर से बाप का साया पहले ही छीन गया था और अब बस माँ थीं जिनके जाने के बाद वो अनाथ हो जाती, वह अपनी माँ के लिए वो न सिर्फ उस जगह पर आई बल्कि अर्णव से शादी भी कर ली उसने। प्यार तो ज़िंदगी में पहले ही नहीं था। अब तक की सारी ज़िंदगी संघर्ष करते, दुख सहते, ताने सुनते बीती थी और अब अर्णव की बेवजह की नफ़रत भी उसी के हिस्से आई। एक बार बचपन में उस पर उसके पापा की मौत की वजह बनने का इल्ज़ाम लगा था, जिसकी सज़ा वो आज तक भुगत रही थी, और अब अर्णव जाने कैसे कैसे इल्ज़ाम लगा रहा था उस पर, सज़ा दे रहा था उसे उस गुनाह की जिसके बारे में वो कुछ जानती तक नहीं थी। धृति के दिलो दिमाग में अर्णव की कही बातें, उसके लगाए इल्जाम घूम रहे थे और वो बहुत सोचने के बाद भी उनके पीछे की वजह जानने और अपनी गलती ढूंढने में असमर्थ थी। धृति के बारे में बाकी बातें धीरे धीरे पता चलेगी। बहुत से राज छुपे हैं अभी, जिन पर से धीरे धीरे पर्दा उठेगा।